ధ్యేయం సదా పరిభవగ్నమభీష్టదోహం తీర్థాస్పదం శివవిరించినితం శరణ్యం భృత్యార్తిహం ప్రణతతాలభవాబ్ధిపోతం వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం. జేఠవదీ అమావస్ సంవత్ 1995 29/5/38 దోపహర్. बहुत सुंदर लेख है, थोड़ा बहुत अभी पढ़ा, बहुत अच्छा है. प्रेमी के संग से प्रेम बढ़ता है और यदि नहीं बढ़ता है तो समझना चाहिए कि अपने प्रेमी का संग नहीं किया. यदि हम चोर का संग करेंगे तो चोरी की आदत पड़ेगी. यह निश्चित बात है, जैसा संग वैसा रंग. यदि हम भगवान के गुणगान का वर्णन करेंगे तो भगवान का हमारे में प्रेम होगा. जैसे हम किसी व्यक्ति का गुण गाते हैं और वो बात उस व्यक्ति के पास पहुंचेगी तो उसका हमारे प्रति प्रेम बनेगा. इसी प्रकार यदि हम भगवान के गुण गाएंगे तो भगवान तो सर्वत्र है, उनको जाकर कोई कहे ऐसी बात तो है नहीं, वे तो जान ही जाते हैं. जब उनके मन में ये भाव होता है कि यह मेरे से प्रेम करता है तो फिर भगवान के मन में भी आएगा कि मैं भी इससे प्रेम करूं तो वे भी हमसे प्रेम करेंगे. और जैसे हम किसी से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाए तो अंत में वह पुरुष हमको मिल ही जाता है, उसी प्रकार यदि हमारे में भगवान को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा है तो प्रभु तो स्वयं मिल जाएंगे. भगवान के तत्व गुण प्रभाव इनका श्रवण पुनः पुनः कथन मनन करने से प्रेम जागृत होता है और फिर वो बढ़ता रहता है. हमको ये निश्चय करना चाहिए कि हम प्रभु के अंश हैं और जब ये बात निस्संदिग्ध रूप से बैठ जाएगी कि हम प्रभु के ही हैं तो हमारा स्वाभाविक ही प्रभु के प्रति प्रेम हो जाएगा. एक कोई गृहस्थी ब्राह्मण था, वह अपना रोजगार करने के लिए विदेश चला गया. व्यापार करते करते 16 वर्ष हो गए. फिर वह घर गया, जब लड़के को मालूम पड़ा कि वे इस स्टेशन पर आएंगे तो वो वहां जाकर एक धर्मशाला में बैठ गया. उसका पिता भी स्टेशन से गाड़ी से उतरकर स्टेशन के पास धर्मशाला थी उसमें ठहर गया. अब वो जो लड़का था उसके जोर से बीमारी के कारण बुखार आया, खूब जोर जोर से रोने लगा. तो उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को तो पहचाना नहीं, और धर्मशाला के मैनेजर से कहा ये कौन है, सोने नहीं देता है, रोता है, चिल्लाता है, बीमार है, तो मेरे कमरे में क्यों रखा, दूसरे कमरे में ले जाओ। तो दूसरे कमरे में निकलवा दिए। उस बीमार लड़के ने पूछा कि महोदय आप कहां से आए हो। उसने ब्राह्मण ने कहा मैं कलकत्ते से आया हूं। इससे क्या मतलब, नहीं आज कलकत्ते से मेरे पिताजी भी आने वाले थे इसलिए पूछ रहा हूं। क्या नाम तुम्हारे पिताजी का, तो नाम बताया। अरे ये नाम तो मेरा है, कौन जाति के हो तुम, ब्राह्मण हूं तो, और मैं उनका बेटा हूं। अरे तुम मेरा बेटा है, तो क्या आप मेरे पिता है। अब पिताजी खूब पश्चाताप करने लगे और अब उसको अपने कमरे में ही रखा, उपचार करने लगे, सेवा करने लगे, बेटा तू ही था क्या। और वो कहे पिताजी आपने मुझे बाहर क्यों निकाल दिया बेटा, मुझे पता नहीं था। और वो कभी गर्म पानी लावे, कभी दवाई देवे, कभी भगे भगे दौड़े जावे और धर्मशाला के मैनेजर से कहे कि कोई डॉक्टर की व्यवस्था करो, तब वो डॉक्टर की व्यवस्था करी। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही यदि हम परमपिता परमेश्वर को जान ले कि अरे हम आनंदमय परमात्मा के अंश हैं, वो हमारे पिता है, हमारे सब कुछ वो ही है, वही हमारे परम सुहृद है गीता में कहा, और उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, हम उन्हीं में ही रहते हैं, वो हमारे में ही रहते हैं, हमारा इनका कोई वियोग हो ही नहीं सकता, वो हम सबके पिता है, क्योंकि भगवान ने भी कहा है अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित है। तो फिर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा कि नहीं, सबकी सेवा करने से परमात्मा की सेवा होगी कि नहीं, सब में वो ही है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रहता, सारे प्राणियों के हित में जो लगा रहता है, रत रहता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। बच्चा रोता है तो बाप ही उसका दुख दूर करता है, रोते हुए बच्चे को देखकर मां ही दुखी होती है। ऐसे हमारी जो आज दुरावस्था हो रही है, हम जो संसार में दुख पाते हैं, उससे भगवान कोई सुखी थोड़ा ही है। सबसे पहले तो आप भगवान को सुखी करो, संसार के दुखों को अपने से हटा दो, इससे भगवान बड़े सुखी होंगे। कई समझदार बेटा ऐसे होते हैं कि जो अपने दुख को मां बाप के सामने कहते ही नहीं है, इसलिए नहीं कहते कि मां है दुखी हो जाएगी, पिता को दुख हो जाएगा। भगवान ऐसे तो नहीं है, पर भगवान का दुख और प्रकार का है। तो अपने भगवान के पास ही रो, भगवान से ही प्रार्थना करो, वही दुख दूर करेंगे। किसी भी काम में यदि चूक हो जाए तो भगवान के पास बैठकर रो, पश्चाताप करो। सबकी आत्मा परमात्मा है, यदि हम स्वार्थ त्याग कर प्रेम करेंगे तो वह परमेश्वर की सेवा है, किसी प्राणी की सेवा नहीं है, ये किसी की सेवा, भगवान की सेवा है। स्वार्थ पूर्वक करोगे तो स्वार्थ की सेवा है। घर में जैसे मां है बच्चे की सेवा करती है, ऐसे मान ले, चाहे ये मान लो कि हित करती है, इसी प्रकार हमको सबकी सेवा अथवा हित करना चाहिए। एक बार नामदेव जी के घर में एक कुत्ता आ गया और वो रोटियों को ले जाने लगा, तो फिर वे उसके पीछे पीछे दौड़े। अब कुत्ता आगे, कुत्ता देखता है कि मुझे मारेंगे और वो बोलते हैं कि हे नाथ, इन रोटियों को क्यों ले जाते हो, ये सूखी है, थोड़ा ठहरो, मैं घिलोड़ी लेकर आया हूं, मैं जरा इसमें घी से चुपड़ लूं, उसके बाद आपको मैं अपने आप ही दे दूंगा। अब कुत्ता भगता जाता है, वो पीछे चिल्लाते जाते हैं, भगवान थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं इतना दौड़ नहीं सकता हूं, ये घिलोड़ी है कि घी डलवा लो प्रभु, थोड़ा ठहरो ठहरो। इतने में ही कुत्ते के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि नामदेव जी की दृष्टि में वो भगवान है, अब भगवान खाली क्यों रहते। अब आप चाहे कुछ भी कह दो, हम तो और ही बात समझते हैं, कैसे नामदेव जी का दर्शन करने भगवान आए। एक बार उनकी झोपड़ी में आग लग गई, नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई, तो वे बड़े खुश हो गए। वाह, उन्होंने कहा हे भगवान, आज तो आपने अग्नि का रूप धारण किया, मेरी सारी वस्तु, मेरी झोपड़ी पवित्र हो गई प्रभु, ये थोड़ी बहुत चीजें बची हैं, इनको मैं आपसे अलग क्यों करूं। ये भी स्वाहा अग्नि फेंकनी में फेंक दी और नामदेव जी खुश हो गए। अब रात को नामदेव जी आराम से प्रसन्न होकर सो रहे थे, आज भगवान अग्नि के रूप में आए हैं। तो सुबह उठकर देखते हैं कि वो तो पुरानी गली सड़ी झोपड़ी थी, बहुत सुंदर झोपड़ी बनी हुई, खूब कस करके बनी हुई, जितनी वस्तुएं अग्नि में डाली थी सब वस्तु बड़ी सुंदर वहां पर नए रूप में वही मिली वो वस्तु। कितने रहस्य की बात है, सबसे हम हेतु रहित प्रभु से प्रेम करें तो फिर भगवान तुरंत प्रकट हो जाए। भगवान के भक्त का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने उ प्रभु परमारथ नाई। जितना भी संसार में ये मित्रता का भाव है, स्वार्थ का लेना देना है। हे प्रभु, परमार्थ की बात तो संसार के प्रेम में स्वप्न में भी नहीं है, सभी अपने स्वार्थ के मित्र हैं, स्वप्न में भी कोई हेतु रहित प्रेम नहीं करता। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। हेतु रहित प्रेम करने वाले हे भगवान, या तो आप हो या आपके भगत जन है। भगवान के गुण जिसमें न हो वो भक्ति क्या। जो भगवान को सुरित जान जाता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान में जो सुरितता है वह भगवान का भगवत्व है। प्रभु में जो सूर्य रहता है वो ईश्वरत्व है, यही प्रभु की महिमा है। यदि ये बात समझ लें तो फिर भी हम सुहृद बन सकते हैं। स्वामी में जो उत्तम बातें हैं उनको तो सेवक को ग्रहण कर ही लेना चाहिए। सुहृद वही हो सकता है जो हेतु रहित प्रेम करे। भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च, किसी में भी द्वेष नहीं करना चाहिए। सब काम प्रभु की कृपा से होते हैं। यदि मृत्यु हो जाए या मृत्यु का समय आ जाए या मृत्यु का वातावरण बन जाए, अंदर में दुख मत करो। ये मृत्यु भी भगवान है, बीमारी भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो फिर हमारी मृत्यु भगवान से अलग कहां से आएगी? ये भी भगवान का रूप है। अब भगवान का ही रूप जीवन है, भगवान का ही रूप मृत्यु है। अब जीने का तो लालच रखते हैं, मृत्यु से हम डरते हैं, तो फिर सब में भगवत भाव कैसे हुआ? इसलिए मृत्यु में दुख मत मनाओ, चाहे अपने मृत्यु का समय हो, चाहे अपना कोई है प्रेमी वो मरे, दुख मत मनाओ। दुख की सृष्टि भगवान के यहां है ही नहीं, ये तो जीव बनाता है। प्रभु बड़े दयालु हैं, उनके सामर्थ्य का तो वर्णन कोई कर भी नहीं सकता। यदि हम हेतु रहित होकर संसार से प्रेम करेंगे तो सारा संसार हमसे प्रेम करेगा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। देवता मनुष्य सब स्वार्थ के कारण से प्रीति करते हैं, इनके प्रेम में उलझो मत। परिवार का प्रेम स्वार्थ का है और मित्रों का प्रेम भी स्वार्थ का है। निस्वार्थ प्रेम करने की इनमें ताकत कहां है? कर ही नहीं सकते। देवता भी स्वार्थ में, इंद्र भी स्वार्थ में, मुनियों में भी स्वार्थ। जो भगवान को तत्व से जानता है वही भगवान का भक्त है और वही हेतु रहित प्रेम करने वाला होता है। उसका रति भर भी स्वार्थ नहीं रहता। जीवन मुक्त महात्मा पुरुष, बहुत सुंदर बात आ रही है। जीवन मुक्त महात्मा पुरुष यदि संसार में अपने नाम की पूजा करवाए या अपना नाम लोगों से कहे तुम मेरा नाम लिया करो, अथवा फोटो की पूजा चाहे कि मेरी फोटो रखो, फोटो की पूजा करो, या अपनी बड़ाई चाहे कि आप लोग मेरी प्रशंसा, मेरा गुणगान करो, ध्यान करो तो आप मेरे इस शरीर का ध्यान करो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो, ऐसा कहे, मान चाहे कि देखो हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे से सीखते हो, हमारे कोई अवगुण नहीं देखना, हमारे अवगुणों का बखान मत करना, नहीं तो तुम गुरु विमुख हो जाओगे और तुम्हारा पतन हो जाएगा, ऐसा कहता हूं। और उससे पूछे कि आप ऐसा क्यों कहते हो जी, ये दंभ का प्रचार क्यों करते हो? हम तो हित के लिए करते हैं, हम हमारे दूसरों के हित के लिए करते हैं, इसमें बुरा क्या है? तो उसको दूर से ही हाथ जोड़ दो, वह जीवन मुक्त के लक्षण है ही नहीं। जो अपनी मान बढ़ाई चाहे, अपनी प्रतिष्ठा चाहे, दूसरों का वो हित कर ही नहीं सकता, बेचारे में ताकत ही नहीं है, दूर से हाथ जोड़ दो। जीवन मुक्त तो कुछ भी नहीं चाहता, वो तो ब्रह्ममय हो जाता है। जो सच्चिदानंद घन परमात्ममय हो जाता है वह जीवन मुक्त पुरुष है, वो हमारी दृष्टि में जीवन मुक्त है, वास्तव में वो परमात्मा का स्वरूप है। वह तो जीवों की दृष्टि से सबके कल्याण हो ये भावना रखता है। राम कृष्ण शिव सब एक है। ब्रह्म बुद्धि से चाहे किसी का भी नाम जपो सब एक है। देखो भक्ति मार्ग का जो भक्त है आप उसकी पूजा करोगे तो वो डांट करके कहेगा, अरे हमारे स्वामी के रहते हुए तुम मेरी पूजा करते हो, कितनी भूल करते हो। यदि कोई आदमी दादा के पिता के सामने उनके पोते को कोई प्रणाम करता है तो क्या ये शिष्टता है? और वो पोता वो पुत्र प्रणाम करवाता है तो अच्छा लगता है? महामूर्ख है। ऐसे ही भक्त देखता है, सब भगवान, सबके भगवान, सब में भगवान, मेरी पूजा करते हो, भगवान को छोड़ करके भगवान की जगह महान भूल करते हो। वो भगत तो सारे संसार को विष्ठा के समान त्याज्य समझता है। जो तत्ववेत्ता पुरुष है हमको वही सच्चा उपदेश दे सकते हैं, और जिसके अंदर वैराग्य होता है वही वैराग्य की बात बता सकता है। क्या कोई विषयी पुरुष हमें वैराग्य की बात बतला सकता है? जीवन में तो वैराग्य है नहीं, वैराग्य की बातें करें। वैराग्य तो वही समझा सकता है जो सारे संसार को मिट्टी के समान समझता है। कोई इत्र लगा दे तो उसको मूत्र के समान समझता है। इत्र को मूत्र के समान। मैं थोड़ा निर्लज्ज होकर बोलता हूं, मुझे तो ये इत्र आदि अच्छे नहीं लगते हैं, बड़ी घृणा होती है। आपने कहा पुरुषों की माला, आपने कहा कि पुष्पों की माला चढ़ावे क्या, तो मैं तो आपसे यही कहता हूं कि जो जो मुझे पुष्पों की माला चढ़ाना चाहते हो तो वे मुझे जूतों की माला पहनाओ, या भरी सभा में मुझे जूतों से मारो, इससे क्या होगा? क्यों व्यर्थ के ढोंग में फंसते हो? ये श्रद्धा है? एक सन्यासी महात्मा थे, उनको देखकर एक गृहस्थी ने प्रणाम किया तो सन्यासी महात्मा ने भी उसको प्रणाम कर दिया। तब उस गृहस्थी ने कहा, महाराज आप तो सन्यासी हो, आप मुझे प्रणाम क्यों करते हो? उसने कहा, आप मुझे क्यों प्रणाम करते हो? सन्यासी ने पूछा, आप मुझे क्यों प्रणाम, आप तो त्यागी हो इसलिए प्रणाम करते हैं। सन्यासी महात्मा ने कहा, तुम महात्यागी हो। महाराज मैं महात्यागी कैसे हूं? तो मैं त्यागी कैसे हूं? आपने रुपया पैसा और परिवार सबका त्याग कर दिया इसलिए त्यागी हूं। मैं तो महाराज त्यागी नहीं हूं। सन्यासी ने उत्तर दिया कि भाई मैंने तो विषयों को छोड़ा है, कुटुंब है, पैसा है, घर बार ये छोड़ा है, किंतु ईश्वर तो मेरे पास है ना। और तुमने ईश्वर जैसी चीज का तो त्याग किया और विषयों के संग्रह में लग गए। तुम कितने बड़े त्यागी हो, तुमने तो विषयों से भी ईश्वर को बड़ा, विषयों को ईश्वर से भी बड़ा मान लिया। आपकी दृष्टि में विषयों से बड़े ईश्वर है, इसलिए तुमने बड़ी चीज का त्याग किया। तो कहा महाराज ये तो मेरा पतन है, तो फिर पतन से उठो। यदि तुम भी असली त्यागी बनना चाहते हो तो ईश्वर को पकड़ो। इसलिए सारी दुनिया में साक्षात प्रभु को विराजमान मानकर सबकी सेवा करो। भगवान ने कहा है जो मुझे सबका सुहृद जानता है वह शांति को प्राप्त होता है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मनु जी ने कहा है वे धन्य है जो मान और बड़ाई को विष के समान समझकर त्याग देते हैं और लोगों की निंदा को अमृत के समान समझकर खूब प्रेम से पीते रहते हैं। निंदा की बात सुनो तो अंदर से खुश हो जाओ। अरे क्या बताएं, कुत्ता है उसको भी ऐसा करते हैं तो वो खुश होकर पूंछ हिलाता है। यदि आप भी मान से खुश होते हो तो आप में और कुत्ते में क्या फर्क है। मैं किसी की निंदा के लिए नहीं बोलता हूं, मैं एक वास्तविक बात में बोलता हूं। हमारा किसी ने मान किया और हम खुश हो गए, वैसा ही मान कुत्ते को मिला तो कुत्ता खुश हो गया, क्या फायदा है हमारे में और कुत्ते में, हमारे मनुष्य शरीर से क्या फायदा है। कुत्ता भी बाल बच्चों के साथ रहता है, कुतिया के साथ रहता है, वो भी खाता पीता रहता है, सोता है, जागता है, यही काम हमारा रहता है, तो हमारे में और कुत्ते में क्या फर्क है। कभी इस बात पर विचार किया गहराई से? सारे भूतों में दया करना देवी संपत्ति का लक्षण है। सब जगह प्रभु को देखें तो ये प्रभु की सेवा है। यदि हम हरेक को आराम पहुंचावे तो ये आराम प्रभु को मिलता है। और जब मनुष्य प्रभु के अर्पण हो जाता है तब चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे जीना हो, चाहे मरना हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये तो सब प्रभु का विधान है, प्रभु की परिस्थिति है। ऐसा जो मानकर रहता है वो मनुष्य निर्द्वंद मस्त रहता है। जिसको हम अपना पराया जानते हैं, हम पराया की तो प्रभु के अर्पण कर देते हैं किंतु अपना अर्पण नहीं करते। अपने आप को अर्पण करो, ये वस्तु अर्पण कर देते हैं, रुपया प्रभु के यहां चढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, पर अपने को बाकी बचा के रखते हैं। इसलिए आपके मन में रहता है हम तो इतना करते हैं फिर भी प्रभु क्यों नहीं प्रसन्न है, अपने आप को क्यों नहीं अर्पण किया। प्रभु आपकी चीज वस्तु से खुश नहीं है, वो आप अपने को अर्पित करोगे तब भगवान के लायक अर्पण होता है, फिर कोई चिंता की बात नहीं। गोपियों ने अपने आप को प्रभु के अर्पण कर दिया। भगवान ने कहा अपने पतियों के पास जाओ, अपने पुत्रों के पास जाओ, अपने परिवार वालों के पास जाओ, तो गोपियों ने क्या जवाब दिया कि हमारे पति पुत्र जो परिवार के संबंध है सब आप ही है, इसलिए हम तो उचित जगह पर आए हैं, आप ही हमारे सब कुछ हो। हमको हर वक्त प्रभु को पकड़े रहना चाहिए, प्रसन्नता युक्त देखना चाहिए। ऐसा करने से हमको हर वक्त याद रहेंगे तो फिर हमारा प्रेम बढ़ेगा। इस प्रकार जो प्रभु के प्रेम, प्रभु को प्रेम से भजता है, प्रभु भी उसका भजन करते हैं, क्योंकि ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। ये कोई झूठी बात नहीं है, फुसलाने की बात नहीं है। बोलने ही वाला था, वही बात आ गई। भगवान को भीष्म भजता था तो भीष्म को भगवान ने भजना चालू किया। यदि ईश्वर मनुष्य परमेश्वर के तत्व को जानता है तो वह रुपयों को तो मिट्टी के समान ही समझेगा। भगवान को जो जिस प्रकार से भजता है, भगवान कहते हैं मैं उसकी उसी प्रकार से भक्ति करता हूं। भगवान का ध्यान करने से भगवान उसका ध्यान करते हैं। भगवान को यदि हम अपने हृदय में बसा लेते हैं तो फिर भगवान उसके हृदय से अपना आसन कभी उठाते ही नहीं है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या। हमारा भजन कब सिद्ध हुआ? जब भगवान को छोड़कर हमारा मन कहीं न जाया। भगवान का ध्यान लगने में बाधा पड़े तो समझो भगवान के प्रभाव को हमने अभी जाना नहीं है। भगवान का प्रभाव जान ले और वो प्रभाव मन में न बैठे कैसे होगा? भगवान के प्रभाव को जाना हुआ पुरुष रात दिन भगवान को ही चाहता रहता है। आजकल लोग पैसे के दास हो गए, सब पैसा 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 करते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पैसे के गलत प्रभाव को हृदय में रख लिया कि पैसे से ये होता है, पैसे से वो होता है, पैसे से व्यापार चलता है, पैसे से चीजें, पैसे से प्रशंसा होती है। देखो बोलो मत, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो पैसे के प्रभाव को हृदय में बसा लिया, अब पैसा निकलता नहीं। एक व्यापारी सवेरे से लेकर शाम तक चेष्टा करता रहता है कि कैसे रुपया बढ़े, कैसे रुपया बढ़े। रोज वो यही करता है, बढ़ाता है, करता है, व्यापार थकता ही नहीं। जितने ग्राहक उसके पास आते हैं, चीज वस्तु खरीदते हैं और उसको नफा होता है, उतनी उसके अंदर से खुशी होती है, क्योंकि उसने अपने अंदर पैसे का प्रभाव बैठा लिया। इसी प्रकार हमें भगवान को, भगवान के प्रभाव को हृदय में बैठाना चाहिए। पैसा तो पेशाब के समान है। यदि हम भगवान के तत्व को जान लेंगे तो पैसों की तरफ देखने की इच्छा ही नहीं होगी। हे महापुरुष, कौन कहे ये बातें? पैसा न पेशाब समझे। भगवान को, भगवान के तत्व को जानने वाला मिट्टी को पत्थर के समान देखेगा, कुछ नहीं। मिट्टी पत्थर के समान है ये पैसा। गीता जी ने लिखा है समलोष्टास्म कांचन है। लोष्ट माने मिट्टी का लौंदा, अश्म माने पत्थर और कांचन माने सोना, इसको सम दृष्टि से देखता है। सारे केंद्रों का घर पारस है, फिर रुपयों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, पारस ही अपने पास रख लो। इसी प्रकार परमेश्वर की अनंत शक्ति है, जैसे पैसे के प्रभाव को जानने वाला पुरुष पैसा कमाते समय नहीं थकता है, न नींद आती है, न प्यास लगती है, वो ग्राहक रहते हैं उस समय भूखा भी होगा तो रोटी नहीं खाएगा, वो ग्राहक से मुनाफा लेगा, सारे दिन भूखा मर जाएगा, रोटी नहीं खाएगा, लेकिन आज पैसा अच्छी कमाई, रोटी तो बाद में ही खा लेंगे, लगा ही रहता है, थकता ही नहीं, भूख प्यास की भी चिंता नहीं, जल का गुटका भी लेगा तो बात करते करते लेगा, एक गुटका लिया फिर बाप बात करेगा, फिर गुटका लिया फिर बात करेगा, वो पैसे कमाने में प्यास को जल को भी आफत मानता है। ऐसा प्रभाव यदि अपने हृदय में प्रभु के प्रति हो जाए तो कैसे रात में नींद आ जाएगी, कैसे दिन में हम पैसे कमाने की सोचेंगे। वहां बड़े बड़े भक्तों ने कहा हमको नींद नहीं आती, हम क्या करें। अच्छे अच्छे भक्तों ने कहा है कि भगवान का भजन करते हैं हम थकते ही नहीं। असली धन है भजन ध्यान, पूरी आशा रखो, विश्वास रखो, आपका भजन जितना हो रहा है वो बहुत बड़ा धन मिल रहा है। संतों ने कितनी अच्छी बात कही, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय सियावर रामचंद्र जी की जय। यदि हमारे पास सच्चा धन होगा तो राजा महाराजा लोग हमारे चरणों में लुढ़कते फिरेंगे। आज पैसों के लिए आप लोगों के चरणों में लुढ़कते फिरते हो। बड़े बड़े राजा महाराजा धनी आदमी आपके चरणों में लुढ़कते फिरेंगे। धन कमाओ तो असली धन तो कमाओ, इस नकली धन को जो कि विष्ठा के समान है क्या इसके बटोरने में लगे। वैराग्यवान पुरुष यूं ही नहीं होते, जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं उनको जब आंधी आती है तो आंधी उनके वैराग्य को बढ़ाने वाली होती है, और भोगी पुरुष के लिए वो बहुत बुरी होती है। आंधी क्या होती है पता नहीं, ये बात समझ में नहीं है, कुछ छूट गया। भी समुद्र को वही पार कर सकता है जिसके पास साधन हो, जिसके पास बल हो। दो ही उपाय है, ज्ञान मार्ग जैसे वैराग्य और उपरामता। इस संसार में विषय रूपी जल से भरा हुआ वैराग्यवान पुरुष समुद्र को पार कर जाता है। जब वह पार जाना चाहता है तब कंचन और कामनी रूपी जल को त्यागना पड़ता है। जब ऐसा कर लेता है तब मान प्रतिष्ठा होती है, तब वह उसका भी त्याग कर देता है, कीर्ति का भी त्याग करता है, रिद्धि सिद्धि आए उनको भी आफत समझता है, देवता लोग स्तुति करते हैं वो उसको सुहाती नहीं है, ब्रह्मलोक तक का ऐश्वर्य होता है वो उसको मिले वो भी अप्रिय लगता है, क्योंकि वो एक बहुत सुरक्षित जगह पर बैठा है। इस विशाल सागर में वो प्रभु के चरण रूपी नौका में इतना सुरक्षित है कि ये सब चीजें उसका कुछ नहीं बिगाड़ कर सकती। थोड़ा सा इस पर विचार करो। पहली बात तो कि भगवान की आज्ञा का पालन करना, सबको परमात्मा का स्वरूप समझकर सेवा करना, निरंतर भगवान का स्मरण करना, मृत्यु को भगवान का प्रसाद समझना और हृदय में प्रेम भाव केवल प्रभु से ही करना। ध्यान रखो कि मैं प्रभु के अलावा किसी को भी अपना प्रेम तो नहीं दे रहा हूं। बहुत कीमती चीज दुनिया लूट रही है, आप ठगे जा रहे हो और आगे न ठगो, इसलिए सावधान हो जाओ। ये प्रेम रूपी जो आपके पास चीज है ये प्रभु के साथ ही जोड़ो और कहीं मत दो। आपके प्रेम की कीमत केवल प्रभु जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। सब ठगोरे हैं। भगवान के प्रभाव की बात अलौकिक है, महापुरुषों का भी अलौकिक प्रभाव होता है। वे जो कुछ चाहते हैं वह कर सकते हैं। एक गृहस्थी वैश्य था, बड़ा अच्छा भगत था, भगवान की भक्ति खूब करने वाला था। उसका लड़का मर गया, पोता था वह भी खूब बीमार हो गया, इलाज किया पर ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने सेठ से कहा, यहां एक तपस्वी है, वह यदि यज्ञ कुंड की राख की जरा सी चूरी दे दे, राख का चूर्ण दे दे, तो आपका ये पोता ठीक हो सकता है। कुछ लोग गए तपस्वी के पास, तपस्वी को बात बताई और तपस्वी को बोले कि आप यज्ञ कुंड की राख थोड़ी सी दे दीजिए। उसने कहा हम तो साधारण हैं, हम तो साधारण आदमी हैं, अंत में कहा किसके लिए ले जाना चाहते हो, कि वो एक सेठ है ना उनके लिए, तो सेठ से कह दो कि तुम अपने पोते को बैठा दो वो ठीक हो जाएगा। फिर वे वहां आए, सेठ से कहा आप कह दो तो लड़का ठीक हो जाएगा। मतलब सेठ को जाकर कह दो कि तुम लड़के को कह दो, पोते को कह दो कि बैठ जा ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो गया, वो ठीक हो जाएगा। उस सेठ की वाणी में ताकत है। तो लोगों ने कहा सेठ जी कह दो आपके पोते को ठीक हो जाएगा। सेठ ने कहा मैं क्यों कहूं, मैं तो नहीं कहता। लोगों ने कहा कि आपका लड़का मर गया, अरे आपका पोता मर रहा है, मरना तो मरेगा, आप इतना ही नहीं कह सकते कि अरे बैठ जा अभी बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं माने, लड़का मर गया। लोगों ने जाकर कहा ये क्या किया आपने। सेठ ने कहा मेरी वाणी में इतनी शक्ति यदि है और भगवान के विधान से उसकी मृत्यु होने वाली है, तो मेरी वाणी की जो ताकत है उसको एक बच्चे के जीने में क्यों लगाऊं, भगवान के प्रेम में लगाऊं ना। यदि मेरी वाणी में इतनी ताकत है कि मरने वाला लड़का मेरी वाणी से बच सकता है, तो मेरी वाणी की शक्ति को मैं इधर क्यों लगाऊंगा, तो भगवान के भजन में लगाऊंगा। ये महापुरुषों की एक अलग ही बातें होती है। लोगों ने समझा कि देखो कितना मूर्ख सेठ है, लेकिन समझदार आदमी, भगवान का भजन करने वाला भगत, वो देखा अरे सेठ की कितनी ऊंची बुद्धि है। जिसके अंदर त्याग की महिमा होती है, मृत्यु भी उसको नहीं ले जा सकती, देवता लोग भी चुप हो जाते हैं, महापुरुषों से देवता भी भय करते हैं, उनकी इच्छा अपने लिए उत्पन्न ही नहीं होती, उसकी इच्छा भक्तों की इच्छा से होती है। जिस तरह भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, यदि जिज्ञासु में खूब प्रेम है तो उसका महापुरुष एक क्षण में उद्धार कर सकते हैं, उसकी श्रद्धा हो तो वह हमारा कल्याण कर सकते हैं, तो उसका कल्याण हो ही जाता है, उसकी कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती। महापुरुषों के आज्ञा अनुसार यदि मनुष्य काम करे तो फिर उसका कल्याण हो जाता है, परंतु ऐसे पुरुष करोड़ों में कोई एक होता है, जिनके लिए सुख और दुख सम है, मिट्टी और सोना सम है, प्रिय और अप्रिय सम है, निंदा स्तुति सम है, आसक्ति से रहित है। कितने कैसे महात्मा, मान अपमान में सम है, ऐसे गुणातीत पुरुष बहुत थोड़े हैं, पहचानना मुश्किल है। इसलिए एकांत में बैठकर भगवान के सामने खूब रोना चाहिए, खूब रो भगवान के पास, अपने हृदय की सारी गंदगी निकाल निकाल करके भगवान को अर्पित करो, उस गंदगी को भगवान स्वीकार कर लेंगे। सच्ची पुकार होगी तो भगवान स्वयं महापुरुष का रूप बनाकर आपके पास आ जाएंगे और शिक्षा दे देंगे, जिसमें कोई किसी प्रकार का स्वार्थ न हो, जो त्रिलोकी के ऐश्वर्य को पेशाब के समान समझता हो, ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। जिसको देखने से भगवान का स्मरण होता है, तब समझिए कि महापुरुष है। उस महापुरुष के भाव के द्वारा दर्शन करने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ऐसी महिमा महापुरुषों की बताई हुई है। श्रीमन्नारायण नारायण।